Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Angushta Matraha Purushontaratma Sada Jananam Hridaye Sannivishtaha तम स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन मुञ्जादिवेशिकाम् धैर्येण तम विद्याच्छुक्रममृतम् तद्विद्याच्छुक्रममृतमिति मृत्युप्रोक्ताम् नचिकेतोऽथ लब्धा विद्यामेताम् योगविधिम् च कृत्स्नम् ब्रह्मप्राप्तो विरजो भूतमृत्युरन्योऽप्येवम् यो विदध्यात्ममेव। मानवीय जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, उसके भोग विलासिता के जीवन में नहीं है, अपितु भोग विलासिता की ऐन्द्रिक मनोवृत्ति से ऊपर उठकर अपने आप को जानने में है। और यही मनुष्य जन्म का सार्थक उपयोग है। इस मनुष्य जन्म में जो विशेषताएं हैं वो अन्य जीवन में नहीं है, हम पुनर्जन्म मानते हैं। पुनर्जन्म के हिसाब से अनेकों प्रकार की योनियां हैं, अनेकों प्रकार के जन्म हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि, लेकिन केवल एकमात्र ऐसा जीवन है मनुष्य का जीवन। और इस जीवन में हम अपने आप को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, और इसका जो सही उपयोग है ये इसी के जानने में है। और वो तत्व कहीं दूर नहीं है, वो तत्व हम स्वयं हैं। बाहर कहीं पर भी जानना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, केवल अपने आप को जानना है। आचार्य यम ने बालक नचिकेता को कहा कि आपको केवल जानना है अपने आप को, और ये अपने आप को जानना ये कहीं दूर नहीं है। आपको कोई बहुत दूर जाना है या दूसरे काल में जाना है, ऐसा भी नहीं है। आप जहां पर भी हैं, जिस देश में, जिस काल में, जिस रूप में, उसी रूप में जानना है मैं हूं। और ये जानना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, केवल जानने की प्रवृत्ति हो, हमारे अंदर इच्छा हो कि हमें अपने आप को जानना है। यहां पर श्रुति कहती है कि वो तत्व जो है, तत्व की अनुभूति, अपने होने की अनुभूति अपने ही हृदय में होती है। मैं हूं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, जिसको हम जानना चाहते हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो यही है। और वो अंगुष्ठ मात्र, श्रुति ने कहा कि बहुत 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 बड़ा बड़ा होता तो आपको जानने में विलंब होता। आप कहते हैं ना कि भाई बहुत बड़ी चीज है, हम नहीं जान सकते। आदमी बोलते हैं ओहो, वो इतनी बड़ी चीज हम कैसे जानेंगे। तो श्रुति ने कहा कि वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो केवल अंगुष्ठ मात्र है। अरे इतनी सी है। और ये उपाधि को लेकर के बोला है, हृदय की उपाधि को लेकर उसको अंगुष्ठ मात्र बोला। यहां पर श्रुति को आत्मा के परिमाण को बताना नहीं है, वो कितना बड़ा है ये भी बताना नहीं है, और वो कहां पर है ये भी नहीं बताना है। केवल आपको परिचय देना है कि यहां पर है, उद्देश्य उसके परिचय में है। यहां उद्देश्य उसके परिमाण को बताने में नहीं है, देश को बताने में नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा, अणु परिमाण के मन के अणु परिमाण को लेकर बहुत से आचार्यों ने कहा वो अणु है और इस हृदय के परिमाण को लेकर उस तत्व को कहा वो अंगुष्ठ मात्र है और उसको यही जानना है, मैं के रूप में ही जानना है और वो अंतरात्मा पुरुषो वेद वो पुरुष हैं। पुरुष माने पुरुषु सेते इति पुरुषः, जो इस शरीर में रहता है ये शरीर पुर है। ये शरीर के लिए शास्त्रों ने पुर बोला, पुर माने नगर। और ये पुर जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे बाहर का जो नगर है पुर है वो आपका पालन पोषण करता है, आपको आगे ले जाता है, विकास के सारे अवसर आपके नगर में उपलब्ध होते हैं। ऐसे ये जो शरीर है ना, ये शरीर पुर है और इस शरीर में सारे साधन उपलब्ध हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इस शरीर से आत्मा को जानना चाहते हैं तो आत्मा को आप जान लेंगे, ये सुविधा इस शरीर में है। और आप अगली तैयारी भी इस शरीर में कर लेते हैं। आपको अगले जन्म में जाना है तो अगले जन्म की तैयारी भी आप इस शरीर में कर सकते हैं और इसीलिए इसका नाम रखा पुर है। ये शरीर पुर है और वो पशु आदि की जो योनियां है ना वो पुर नहीं, वो गांव है, गांव आदिवासियों का गांव है। अभी हम जाने वाले हैं 1 तारीख से 12 जनवरी आदिवासियों के बीच में और वो पदयात्रा है। हम 12 दिन पैदल चलेंगे, एक गांव, दूसरा, तीसरा, चौथा, उन आदिवासियों में धर्म प्रचार के लिए। उनको कोई गीता भागवत उपनिषद सुनाने की जरूरत नहीं, केवल उनके बीच में पहुंच जाने की जरूरत है। उनको प्रेम, अपनत्व और राम कृष्ण आदि और सनातन धर्म का थोड़ा इतिहास बता दे और उनके जीवन में जो व्यसन है, बहुत सारी जो कमियां हैं उनकी तरफ इशारा कर दे। वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है, वहां न अध्यात्म की सुविधा है और न भौतिक विकास की सुविधा है। और जहां सुविधा न हो, साधन न हो, तो आदमी जहां का वहीं, और कई बार तो पीछे भी चला जाता है। उनको नहीं मालूम कि राम क्या है, हनुमान जी कैसे दिखाई देते रहे, ये भी मालूम नहीं था। अब तो धीरे धीरे मालूम होने लगा है। लोग तो जानते थे हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी की पूंछ थी कि नहीं ये उनको नहीं मालूम था। उनकी लोक गाथाओं में परंपरागत जो लोग थे वो सुनाते थे रामायण कथा के रूप में। तो नारायण वो आदिवासी एरिया गांव और वो झोपड़पट्टी, वहां कोई विकास नहीं है। इसलिए ये जितने पशु पक्षी आदि के जो शरीर है ना वो आदिवासी गांव है, आदिवासी गांव। और ये जो मनुष्य शरीर है वो नगर, और उसमें भी महानगर मुंबई है। यहां मुंबई में जो भी आता है ना वापस नहीं जाता है, जो एक बार आया वो वापस नहीं जाता, वो जैसे ही है, यहां भगवान की कृपा हो जाती है। मेरे को कल किसी ने कहा कि अच्छा, बोले आप मुंबई में हैं, माया नगरी में हैं। वो अपने रुचि सोया वाले शारा जी ने बोला कि आप स्वामी जी माया नगरी में हैं। हमने कहा माया नगरी में हैं लेकिन मायापति के साथ हैं। और जब आप मायापति के साथ हैं तो फिर आपकी माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये आपका जो शरीर है वो महानगर, आप क्या चाहते हो, आप जो चाहते हैं ना वो इस शरीर से मिल जाता है। इसलिए शरीर को बोला है पूर, और इस पूर में निवास करने के कारण हम सबको बोला गया है पुरुषम, हम पुरुष हैं, हम इस मानव शरीर में निवास करते हैं। और वो कहां निवास करते हैं? हाथ में, पैर में, क्योंकि आपका ये पूरा शरीर है ना, ये पूर्ण है भाई। आपका ये महानगर है ना मुंबई, तो आप महानगर में रहते हो, लेकिन रहने का कोई एक स्थान भी तो होगा। आप बोलते ना कि महानगर मुंबई में हम रहते हैं बाबुलनाथ, हम प्रेमपुरी में रहते हैं, तो आपका एक स्थान हो गया। ऐसे ये जीवात्मा इस शरीर में रहती हैं, इस महानगर में, लेकिन महानगर में कहां, घर कहां है उनका, उनकी कुटिया कहां है? तो बोले अंतरात्मा। ये अंगुष्ठ मात्र जो अंतरात्मा, जो हृदय है, इस हृदय में रहता है वो आत्मा। और जब हम आत्मा आत्मा बोलते हैं ना, तो आप किसी दूसरी पराई आत्मा के बारे में मत सोचना। जब हम आत्मा बोलते हैं तो आत्मा माने आप स्वयं। कई बार आदमी को लगता है कि आत्मा, तो आदमी सोचता है कि वो दूर की कोई चीज होगी, उसके बारे में कहा जा रहा है। आत्मा माने आप स्वयं, और वो निवास करते हैं अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय में। और वो किसके हृदय में? जो पोथी पढ़ता होगा उसके हृदय में, जो वेदांत का श्रवण मनन करता होगा उसके हृदय में, जो भगवान के पथ पर चलता होगा उसके हृदय में। बोले नहीं, जना सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः, वो आत्मा सबके हृदय में, चाहे वो आदमी पोथी पढ़ता हो, चाहे नहीं पढ़ता हो, चाहे धर्म पथ पर चलता हो, चाहे धर्म पथ पर नहीं चलता हो, चाहे वो योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे निकम्मा अकर्मी हो, सबके हृदय में वो अंतरात्मा आत्म तत्व निवास करता है। और वो कभी रहता होगा, कभी नहीं रहता होगा, कभी आप मुंबई में रहते हैं और कभी चले भी जाते हैं ना मुंबई छोड़ के, तो वो जो आत्म तत्व इस शरीर में रहता है, तो कभी कोई छोड़ के चला भी जाता होगा? बोले नहीं, सदा सदा। ये जब तक नारायण ना, आपका रहने का समय तब तक, ऐसा समझ लीजिए आप। अच्छा, और बाद में रहेगा कि नहीं? देखो, आत्मा में तो आना जाना नहीं है, आत्मा में न जाना है और न आना है। आत्मा की केवल अभिव्यक्ति होती है, आत्मा केवल दिखाई देता है। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे अभी आप यहां पर बैठे हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल होगा और बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं होगा, तो आप अपने अपने मोबाइल में देखो यहां नेटवर्क है कि नहीं। आप जिसके पास मोबाइल नहीं है ना, उसको पूछो तो बोलेगा मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन आप अपना मोबाइल खोल के देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, हो यहां मोबाइल नेटवर्क है। और वो कौन सा नेटवर्क है? आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि ये वोडाफोन है, एयरटेल है, ये जियो है, ये कौन सा है, आपको मालूम पड़ेगा। और वो मालूम पड़ने के लिए आपको वही सिम चाहिए, आपके पास सिम है, आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में चार्जिंग भी होना चाहिए, और उसके बाद वो मोबाइल ठीक ठाक भी होना चाहिए। भाई मोबाइल तो है और चार्जिंग भी है, नेटवर्क भी है, उसके अंदर सिम भी पड़ी हुई है, लेकिन आपका वो हार्डवेयर जो है ना खराब पड़ा है, तो आपको अब नेटवर्क मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मालूम नहीं पड़ेगा, तो उस समय आप ये बोल सकते हो क्या कि वो नहीं है यहां? आप नहीं बोल सकते, वो नेटवर्क है, इसके अंदर भी नेटवर्क है, लेकिन उस नेटवर्क को मालूम पड़ने के लिए आपके पास मोबाइल चाहिए, वो यंत्र चाहिए। और वो कहां पर है? आपके जेब में है कि नहीं नेटवर्क? हाँ हाँ आप अपने जेब में नेटवर्क रख के लेके चलते हो। अच्छा आपके नेटवर्क जेब में है तो जब आप यहां से अपने घर जाओगे तो वो घर जेब वाला नेटवर्क ही वहां जाएगा कि वहां का वहां मिल जाएगा? यहां आपके जेब में भी नेटवर्क है लेकिन यहां का नेटवर्क आपके घर नहीं जाता है, आप जहां भी जाते हैं वो आपके साथ ही चलता है। वो ऐसे आत्म तत्व नारायण कणकण में विराजमान है। ये जो शरीर है ये शरीर तो आपके मोबाइल की तरह है, मोबाइल की तरह। और इसके अंदर जो मन है, इसके अंदर जो जीवात्मा है वो सीम की तरह है, सीम की तरह। और ये बराबर बराबर है और इसीलिए अपने को क्या मालूम पड़ रहा है कि आत्मा है इसके अंदर, अंगुष्ठ मात्र हृदयो इसमें मालूम पड़ रहा है। और जब आप यहां बैठे हैं तो यहां भी आत्म तत्व है, मालूम पड़ रहा है ना मैं हूं। और जब आप घर जाएंगे तो यहां की आत्मा आपके घर तक पहुंच करके आपको मालूम पड़ेगी कि यहीं की ही मालूम पड़ेगी? अरे वो तो नेटवर्क की तरह व्यापक है, व्यापक है, कण कण में है। और ये तो नेटवर्क तो कभी कहीं होगा कहीं नहीं होगा, लेकिन वो आत्म तत्व का जो अस्तित्व है वो तो कण कण में सारा विश्व अनंत अनंत ये ब्रह्मांड जितने दिखाई दे रहे हैं सबके अंदर वो है। और उसको छोड़कर के बाहर भी है, बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क है परमात्मा का, आत्म तत्व का। और आप जहां भी जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ने के उपकरण है ये शरीर है ये मन है। इसलिए ये मत सोचिए कि मालूम हो रहा है वही आत्मा है, ऐसा नहीं है। केवल यहीं पर है ये आपको जो बोला गया वो केवल आपको जानने के लिए, आपको नेटवर्क जानना होगा तो आदमी मोबाइल हाथ में लेके बोल सकता है कि अरे अरे देखो 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 यहां हम नेटवर्क हैं, ऐसा बोल देता है आदमी। आपको बहुत जरूरी है बात करना और आप परेशान हैं। और जैसे आदमी ने ओ यो देखो देखो यहां नेटवर्क मालूम पड़ गया, यहां नेटवर्क है, अच्छा यही है क्या है? लेकिन ऐसा व्यवहार होता है? ऐसे हमारे श्रुति ने कहा कि वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जो जीवात्मा है सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः, सबके हृदय में है, सबके हृदय में। और वो अहम अहम के रूप में है, मैं आप जो बोलते हैं ना सुबह से शाम तक, आप जिन शब्दों का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं अपने लिए वो मैं शब्द का उपयोग है। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं करूंगा, आपका जो भी व्यवहार होता है ना मैं से जुड़ा हुआ होता है और उस मैं से आप परिचित हैं। लेकिन उस आपको जानना है कि शरीर से अतिरिक्त जो कणकण में विराजमान आकाशवत सर्वगत जो आत्म तत्व मैं हूं, और उस तत्व को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, तम स्वाक्षरीरात् प्रवृहेन, उसको अपने ही शरीर में जान लेना चाहिए, उस तत्व को अपने ही शरीर में जान लेना चाहिए। लेकिन जानने के लिए तो बहुत कठिन मालूम पड़ता है, उस आत्म तत्व को जानना बहुत कठिन मालूम पड़ता है। तो बोले यही तो है, इस काठिन्य को दूर कर उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार की बात है, एक कोई भक्त थे और वो भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके पास भगवान शंकर की शिवलिंग पिंड थी और वो पिंड लेकर के गंगा जी जाते हैं प्रतिदिन और वहां स्नान करते, भगवान शंकर जी को स्नान कराते और वहीं गंगा के किनारे बैठ के भगवान का पूजा पाठ करते, आनंद मनाते घंटों, बहुत भगवान के भक्त थे। एक दिन की बात है, जल्दी वो उठे, हाथ में शिवजी लेकर चल पड़े गंगा किनारे। और उस दिन एकादशी का दिन था, जैसे गंगा किनारे गए उनको लगा कि बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे यहां, और उनको बाथरूम जाना था पुराने जमाने में, और आज भी गांव में लोग लोटा लेके जाते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान शंकर को कहां रखूं, कोई उठा के न ले जाए, तो उन्होंने सोचा कि इनकी सुरक्षा के लिए मैं इनको जमीन के अंदर बालू में गाड़ के रखूंगा। और उन्होंने भगवान शंकर को कपड़े में लपेटा, गड्ढा खोदा और उसके अंदर उन्होंने भगवान शंकर जी को रखा। लेकिन उनके मन में आया कि मैं भूल न जाऊं जगह, कई बार आदमी जगह भूल जाता है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया। और शिवलिंग बनाकर बड़े प्रसन्न हुए और वो सोचने लगे कि 10-15 मिनट के बाद तो मैं आऊंगा और उसमें से निकालूंगा। नारायण उन्होंने अंदर भगवान को रखा, शिव पिंड बनाई और वहां से बाथरूम करने के चले। बहुत ज्यादा भीड़ थी तो थोड़ा दूर चले गए बाथरूम करने के लिए। और गंगा जी स्नान करने के लिए अब सैकड़ों लोग पहुंचने लगे। धीरे 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 भीड़ बढ़ने लगी, जैसे आपके मुंबई के ट्रेन में भीड़ बढ़ जाती है। आप पहले ट्रेन में देखो तो डॉक्टर कुछ भी नहीं होता उसमें, खाली खाली। और जैसे 5 मिनट के अंदर दूसरी ट्रेन, अब आपको जगह नहीं मिलेगी। और वो सैकड़ों लोग वहां गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे और लोग सोचने लगे आज कोई विशेष दिन मालूम पड़ता है, एकादशी का, और आज किसी ने यहां पिंड बनाई, लगता है कि पिंड बनाने का भी महत्व होगा। दूसरा व्यक्ति आ करके स्नान करके नारायण उसके बगल में एक पिंड बना दिया उसने। अब तीसरा व्यक्ति आया, उसने सोचा कि लगता है कि आज के दिन भगवान शंकर की पिंड बनाने का कोई महत्व होगा, उसने उसके बगल में एक बना दी। चौथा आया, उसके बगल में फिर बनाई। पांचवा, और सैकड़ों पिंड बनी नारायण वहां, शिवलिंग ही शिवलिंग। और हर आदमी को ऐसा लग रहा था कि मानो आज का दिन है, ये शिवलिंग बनाने का दिन है। ऐसी परंपराएं बनती हैं। परंपराएं बनने के लिए कोई शास्त्र प्रमाण की जरूरत नहीं है, आदमी को देख करके भी बहुत सारी परंपराएं बनती हैं। अब मेरे को किसी ने बोला कि महाराज ये कपड़ा क्यों बांधते हो। जब मैं मुंबई आने लगा तो हमारे आश्रम में एक कोई सदग्रस्त थे, बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि मुंबई जाओगे? मैंने कहा हाँ मुंबई जा रहे हैं। तो बोले कपड़ा बांध के जाओगे? ऐसे बोलो। पहले तो मैं गांती बांधता था, एक पहन तक सिलावा वस्त्र भी नहीं पहनता था। पहली बार जब मुंबई आए तो गांती बांधता था, सिर में बांधता। अरे बोले ऐसे मत जाओ। तो मैंने कहा फिर कैसे जाऊं? अरे बोले बढ़िया गंजा गुंजा कर लो और चश्मा उश्मा लगाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के तुम जाओ। मैंने कहा उसके क्या होगा? अरे बोले उसी समय तुमको लोग सोचेंगे ये साधु हैं, और ये कपड़ा उपड़ा बांध के जाओगे तो कौन पूछेगा वहां पर। तो बहुत से लोग यहां जब आया मैं तो लोग बच्चे पूछते थे, बच्चे, स्वामी जी ये क्या है, ये क्या? उनको बड़ा अच्छा लगता था, सिर पे कपड़ा बंधा, ये वो सब, साधु है साधु है। अच्छा, उल्टा हो गया, ये बांध के आने से लोग मेरे को साधु समझने लगे। और वो कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो इसमें कोई विशेषता होगी बांधने में, फिर बांधो बांधो बांधो। वो हमारे साधुओं में परंपरा है, जो विरक्त लोग होते हैं ना, विरक्त, जो पैसा नहीं छूते हैं, जो वस्त्र वगैरह कम रखते हैं, जो दुनियादारी से दूर रहते हैं, ऐसे ग्रुप में रहा मैं वर्षों। और वो लोग भी ऐसा कपड़ा बांधते थे सिर पर, कुछ नहीं रखते थे वो, दो वस्त्र शरीर पर, दो वस्त्र रहते थे, एक भगवद गीता की पुस्तक, और पैसे नहीं छूते थे। जहां भी जाते सौ सौ लोगों के ग्रुप में मंडली बोलते, विरक्त मंडली, एक गांव से दूसरे दूसरे तीसरे ऐसे भ्रमण करते रहते। और उनके बीच में जब मैं गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, अरे तो बहुत साधु बढ़िया। फिर उन्होंने सिर पर कपड़ा देखा बंधा हुआ, फिर हमने भी कपड़ा बांध लिया। और एक बार बांध दिया तो फिर नहीं उतारा, हमने कहा अच्छी चीज है चलो बांध लेते हैं। परंपरा ऐसी बनती है, ऐसा नहीं कि इसको बांधने से कोई भगवान मिल जाते। ऐसा नहीं कि इसको बांधने से आपको बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये परंपराएं हैं। और वहां भी नारायण ऐसी परंपरा बनी, सैकड़ों शिवलिंग बना दिए गए, सैकड़ों शिवलिंग। अब वो महात्मा बाथरूम होकर के आए, गंगा जी में हाथ धोया और देखा उन्होंने हमारा शिवलिंग कहां है, भगवान कहां है। और जैसे देखा नारायण सैकड़ों शिवलिंग ही शिवलिंग। अब मैं आपको पूछता हूं कि उनके भगवान कहां है? अरे उनके भगवान तो है, वही है, वही है। अब वो ढूंढ रहे थे, वो अपने भगवान को, शंकर जी को ढूंढ रहे थे, कहां है, यहां है, वहां है। अच्छा बताओ, अब उनको मालूम पड़ रहा था कि नहीं उनका शिवलिंग कौन सा है, नहीं मालूम। अब वो खो गया, वो शिवलिंग जो है ना वो खो गया, अब वो भगवान भी खो गए। अब आपको भगवान को पाना है, वो है वहीं जहां आपने छिपाया है, वो वहीं है, वो जगह भी वहीं है, लेकिन वो जगह खो गई है। खो गई जगह, खोई कि भगवान खोए, और अब उसको खोजना है तो खोजने का एक ही उपाय है। अब एक ही उपाय है कि आप बिल्कुल कूद कर हनुमान जी की तरह अपने शिवलिंग पर पहुंच जाओ, अपने शिवलिंग तक पहुंचो। लेकिन वहां तक पहुंचने का क्या उपाय है, आप कैसे पहुंचोगे? आप वहां तक, वो उपाय तो आपका सफल नहीं होगा। आप दूसरा उपाय है कि आप एक एक करके सारे शिवलिंगों को तोड़ दीजिए आप, और अपने शिवलिंग तक पहुंचने के लिए कई शिवलिंग लांगना पड़ेगा, पैरों से कुचलना पड़ेगा। ओहो ये तो बहुत बुरा है भाई, शिवलिंग बने और शिवलिंग बने तो लोगों ने पूजा भी की है, और जिन्होंने शिवलिंग बनाया वो भी आसपास हैं, वो आप शिवलिंग तोड़ने के लिए जाओगे आपने शुरुआत की है नारायण, आप में शुरुआत करने का सामर्थ्य है, लेकिन उसको बंद करने का सामर्थ्य नहीं। अब आप जाके बताओ लोगों को, बोलो कि भैया मत बनाओ, कोई सुनेगा? बोलेगा पागल हो क्या, अरे आज एकादशी का दिन है, और आज शिवलिंग बनाने से साक्षात शिवलोक चला जाता है आदमी। अब आपको अपने शिवलिंग तक पहुंचने के लिए बहुत साहस अपनाना पड़ेगा, बहुत धैर्य सूझबूझ का परिचय देना पड़ेगा आपको, सारे शिवलिंग तोड़कर अपने शिवलिंग तक पहुंचना पड़ेगा। एक मराठी में बहुत सुंदर वाक्य बोला गया, तुझे आहे तुझे पासी पर तू जागा चुकलासी। अरे बोले तेरा तेरे पास है, लेकिन वो जगह खो गई है, और उस जगह तक पहुंचना है। ऐसे नारायणी आत्म तत्व जो है ना है यही है, लेकिन मालूम पड़ता है क्या, ईमानदारी से मालूम पड़ता है? हम हृदय में विराजमान हैं, हम हैं आत्मा, ये मालूम नहीं पड़ता है? और वो कई शिवलिंगों में खो गया है। हमारा ये शिवलिंग है ना, यही आंख है, कान है, हाथ है, पैर हैं, ओहो, और ये बहुत सुंदर है भैया, बहुत सुंदर है। हमारा आत्मा बालों में खो गया है, हमारा आत्मा आंख में खो गया, कान में खो गया, नाक में खो गया, दांतों में खो गया, पैरों में खो गया, और अब आपको वहां तक पहुंचना है तो ये सारी जो चीजें हैं ना वहां से अपने को ऊपर उठना पड़ेगा। आपको आंख से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको अपने रसनेन्द्रिय से ऊपर उठना पड़ेगा, कान से ऊपर उठना पड़ेगा, हाथों पैरों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप शिवलिंग पहुंचेंगे, आप अपने हृदय में पहुंचेंगे। हम तो उलझे हुए हैं, हम आंख में उलझे हुए हैं, हम कान में उलझे हुए हैं, सुनने में लगे हुए हैं, दुनिया की चीजें मैंने कान में उलझे हैं, हम दुनिया के रूप आकृति सौंदर्य में उलझे हैं, हम आंख में उलझे हैं, हम भोजन में उलझे हैं। हमारे शाहजी नहीं आए क्या? हाँ शाहजी ने बोला कि हम तो रस में उलझे हुए हैं, रस में। हाँ अरे सुबह से शाम तक उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी भोजन बहुत बढ़िया बनाती है पहले तो पत्नी बना रही ना, भोजन बन रहा है बढ़िया बढ़िया, और वो पत्नी बना रही है, और वो धीरे धीरे नारायण पत्नी को खुश करने के लिए आदमी बोलता है ओ बढ़िया बना बढ़िया बना बढ़िया, और बाद में फिर वही बढ़िया लगने लगता है। वो भोजन कोई बढ़िया नहीं होता है, कई बार तो सामने वाले को खुश करने के लिए बोलना पड़ता है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत, और ये भाई साहब आप उलझ गए, आप स्वाद में उलझ गए, आप उस भोजन में उलझ गए, आप भोजन बनाने वाले में उलझ गए, और एक बार आप उलझ गए तो वहां से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, आपको रसनेन्द्र से ऊपर उठना पड़ेगा। जो हमारे मन में पागलपन है भोजन का, ये भोजन का पागलपन आपको कम करना पड़ेगा, और उसको यहां तक आपको खत्म करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आए आपके जीवन में, अब आपको जो मिला उसमें संतोष करो। हाँ, वो चटोरापन है ना। किसी ने मेरे को बोला हमारा चटनी दे, मैंने कहा भैया मैं चटनी नहीं खाता हूं, क्योंकि चटनी का अर्थ है चाटनी। वो तो आपको चाटना पड़ता है ना, और आप चाटोगे तो लोग बोलेंगे ये तो बड़ा चटोरा है। ये आपके जीवन के जो स्वाद है ऐन्द्रिक, इनमें हम उलझे हुए हैं, और यहां से आपको धीरे 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 ऊपर उठना पड़ेगा। और यहां से ऊपर उठना वो शिवलिंग तोड़ने की तरह है मधु बाबू जी, वो जो अनेकों प्रकार के शिवलिंग और शिवलिंग का जो प्रलोभन है आकर्षण, वो एक एक शिवलिंग तोड़कर आपको अपने शिवलिंग तक पहुंचना है। और ऐसे ये ऐन्द्रिक संवेदनाएं और इसके बहुत सारे प्रलोभन आपको वैराग्य के अस्त्र से असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा आपको काटकर अपने आत्मसत्ता तक पहुंचना पड़ेगा। आपको छोड़ना पड़ेगा हाथ का आकर्षण, पैर का आकर्षण, आंख का आकर्षण, रसनेन्द्रिय का आकर्षण, त्वचेन्द्रिय का आकर्षण, और वो सारे आकर्षणों को पार करते हुए आपका जो होना है अंतरात्मा में। और वो जो है ना, वो शब्द की तरह नहीं है, आपका अपना होना शब्द की तरह नहीं है, वो रस की तरह नहीं है, वो रूप की तरह भी नहीं है, वो गंध की तरह नहीं है, वो तो सबसे ऊपर आत्म तत्व निर्गुण निराकार है। और वहां तक पहुंचने के लिए नारायण यहां एक शब्द का प्रयोग किया है, धैर्येण। बहुत बड़ा धैर्य चाहिए, धैर्य। अधीर आदमी होना तो वो अपने आप तक नहीं पहुंच सकता है। आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपको याद आती है, किसकी याद आती है? आपको अपने इंद्रियों की, विषयों की याद आती है, आंख की याद आ जाती है देखने वाले, हा? कान की याद आ जाती है, सीधे सीधे आंख की याद नहीं आती है आपको। आपको आकृति, सौंदर्य, जो जो चीजें आपने आंखों से देखा और वो चीजें आपको याद आ रही, इसका मतलब कि आप आंख में चले गए, आंख में चले गए। और आपको भोजन बहुत याद आ रहा हो तो आप समझ लीजिए कि आप रसनेन्द्रिय में चले गए। अब वहां से हटाइए आप, और हटाने के लिए बहुत बड़े धैर्य की जरूरत पड़ती है, और आदमी छोड़ नहीं पाता है, आदमी ना त्याग नहीं कर पाता है। और आपका अध्यात्म त्याग के बिना संभव नहीं है, वैराग्य चाहिए।